हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 19 और 20। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्ष्णं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम्। लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम्। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहोणा द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादय। येनीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्याकाशिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यम्। नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंध अध्याय 4 जिसका शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम, श्लोक नंबर 19। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकली हुई इन अमृतमयी गंगा को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान के शुद्ध पार्षद सुखदेव गोस्वामी भगवान की महिमा के विषय में बखान करते हुए कहते हैं, स एष आत्मात्मवतामदीश्वर त्रयै मयोदर ममायस्तपोमय गतव्यलीकै अजशंकरादिभिः वितर्कलिंगे वितर्कलिंगो भगवान् प्रसीदता। स एष आत्मात्मवता मदीश्व त्रयै मयोधर्मय मायस्तपोमय गतव्यलीकर अजशंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान् प्रसीदताम्। शब्दात् स एष आत्मा त्वताम् अधीश्वरम्। स एष स मतलब वही भगवान जो है वो यह है आत्मा यानी परमात्मा, आत्मवताम यानी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के। भगवान तो समस्त जीवों के परमात्मा है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं स एष आत्मा वताम अधीश्वर, आत्मवताम यानी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के अधीश्वर है, वो परमेश्वर है। त्रयीमय यानी साक्षात वेद है, धर्ममय यानी मूर्तिमतम शास्त्र है, तपमय अर्थात मूर्तिमतम तप है, गतव्यलीक मतलब आडंबर रहित जिनके अंदर कोई कपट नहीं होता है, और यहाँ पर अज अज का मतलब है ब्रह्मा जी, शंकर यानी शिव जी, आदि भी यानी अन्यों द्वारा, वितर्क्य लिंगे आश्चर्य तथा सम्मान के साथ देखा जाने वाला भगवान, ऐसे भगवान प्रसीदिताम अर्थात मेरे प्रति दयालु हों। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देने से पहले भगवान की अत्यंत ही महिमा करते हैं, और फिर आज भगवान की प्रसन्नता करते हुए, भगवान की प्रशंसा करते हुए उनको उनके लिए कहते हैं कि वो भगवान जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में बैठे हुए हैं, लेकिन जो स्वरूप सिद्ध हैं, यहाँ पर आत्मवताम यानी जो स्वरूप सिद्ध हैं, जो आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, उनको उनके परमेश्वर है यानी उनको बहुत ही प्रिय है। और इसके अलावा जितना भी वेद है, जितना भी ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान वो स्वयं ही है। शास्त्र जितने भी शास्त्र हैं वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, और जो जितनी जीव तपस्या करता है वो सारी तपस्या साक्षात भगवान ही के लिए है। मतलब शास्त्रों में वेदों में यदि कुछ प्राप्त करने योग्य है तो वो साक्षात भगवान ही है। और संसार में जीवों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उसी जीव को भगवान मिलते हैं जो इच्छा शून्य होता है, यानी किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता बल्कि सिर्फ भगवान की इच्छा करता है, और जानता है कि भगवान ही समस्त वस्तुओं का स्रोत है, तो जब भगवान मुझे प्राप्त हो जाएंगे तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। हृदय के अंदर कृष्ण के लिए जिसके प्रेम होता है वही व्यक्ति जो है वो कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, और कृष्ण ही वास्तव में प्राप्त करने योग्य हैं। त्रयी मयो धर्म मय तपह मय, सब कुछ भगवान ही है, लेकिन साधारणतया लोग जो है वो भौतिक इच्छाओं में लगे हुए होते हैं। लेकिन गतव्य लीकर अज शंकरादे भी, वो व्यक्ति जो गतव्य लीकर मतलब जिनके अंदर कोई कपट नहीं है, जिनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, आडंबर नहीं है, ढोंग नहीं है, ऐसे आडंबर रहित जीव जो होते हैं वो कैसे हैं? अज शंकरादि भी, जैसे ब्रह्मा जी, जैसे शिव जी, इस तरह के जो लोग, इस तरह के जो जीव हैं, इतने शुद्ध जो हैं, या फिर ऐसा बताया जाए कि जिस तरह से चार संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, इनके मुख्य कौन कौन हैं? पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और जो ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं वो लोग, फिर रुद्र जी को यानी शिव जी को ज्ञान दिया तो शिव जी के संप्रदाय में आते हैं वो वैष्णव, जो लक्ष्मी जी के संप्रदाय, आदि भी का मतलब है जो लक्ष्मी जी के संप्रदाय में आते हैं वो, जो चार कुमारों के संप्रदाय में आते हैं वो, ये शुद्ध वैष्णव हैं और इनके जीवन का लक्ष्य केवल भगवान को प्रसन्न करना है। तो गतव्य लेकर अज शंकर आदि भी, और ऐसे लोगों के द्वारा भगवान जो है वो पूजित हैं जो केवल और केवल उन्हीं की कामना करते हैं। वितर के लिंगो भगवान प्रसिद्धते, वितर के लिंगो यानी कि भगवान के कार्यकलाप और भगवान की लीलाएं इतनी आश्चर्यजनक हैं और उनको आश्चर्य और सम्मान के साथ देखा जाता है, यानी जो उनके भक्त होते हैं, उनके शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो भगवान के कार्यकलापों को अत्यंत ही आश्चर्य और सम्मान के साथ पूजते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक भगवान के विषय में बोल पाना संभव नहीं है। इसलिए आज मैं बहुत महान कार्य करने जा रहा हूँ, तो मेरी इच्छा है, अनुवाद देखिए, वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हों। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि परम भगवान आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पंथों यानी अनुयायियों के स्वामी हैं, तो भी वे उन्हीं लोगों द्वारा गेय हैं जो आडंबर से परे हैं। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत शांति या शाश्वत जीवन की खोज में रहता है और इस गंतव्य को लक्ष्य बनाकर वह या तो वैदिक शास्त्रों या अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है या ज्ञान मार्ग की दर्शनों को या योगियों अथवा अनन्य भक्तों इत्यादि के रूप में कठोर तपस्या करता है। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि वे समस्त छल छद्म से ऊपर होते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि जब तक हृदय के अंदर भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी की इच्छा रहती है तब तक भगवान प्राप्त नहीं होते। जब शुद्ध भक्ति हृदय में आती है, और शुद्ध भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। यहाँ पर संसार में जी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत शांति या शाश्वत जीवन की खोज में रहता है और उस जीवन को, आनंदित जीवन को, शाश्वत जीवन को प्राप्त करने के लिए या तो ज्ञान मार्ग में चला जाता है या ध्यान मार्ग में चला जाता है या फिर कर्मकांड में चला जाता है, वैदिक शास्त्रों का पालन करता है। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों के को ही हो पाती है, क्योंकि वे समस्त छल छद्म से ऊपर होते हैं। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं वे सामान्यतः कर्मी, ज्ञानी, योगी या भगवत भक्त के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। कर्मी लोग जो वैदिक कर्मकांडों के सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, वे भुक्तिकामी अर्थात भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले हैं। अभी सबसे पहले श्री प्रभुपाद जी कर्मी लोगों के विषय में बताते हैं, जो वेदों में, अभी ये सारी चीजें वेदों में ही बताई गई हैं, कर्मकांड भी बताया गया है कि यदि आनंदित होना है तो किस तरह से, अच्छा प्यार पूरी करनी है तो किस तरह से। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं और कोई ना कोई भोग की इच्छा करते हैं। वे भुक्तिकामी होते हैं, यानी भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले होते हैं। उसके बाद ज्ञानी जन, जो मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं, वे मुक्तिकामी अर्थात भौतिक अस्तित्व से मुक्ति की इच्छुक कहलाते हैं। वो उनका भौतिक भोग की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो क्या चाहते हैं, एक प्लेट लड्डू की प्रार्थना करके पूरा जो है ना लड्डू का कारखाना वो अपनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भगवान के अंदर एक हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, और इस तरह से ये सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, योगी जन होते हैं, जो 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं और अंततः समाधि में परमात्मा से मिलते हैं, वे सिद्धि कामी कहलाते हैं। ये योगी सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर बनने, बारीतर से बारीतर बनने, कुछ भी इच्छित वस्तु प्राप्त करने, सबों पर नियंत्रण करने, इच्छा अनुसार वस्तुएं उत्पन्न करने इत्यादि की इच्छा करते हैं। ये सब शक्तिमान योगी की क्षमताएं हैं। यहाँ पर योगी के विषय में बताते हैं, जो योगी होते हैं वो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उनकी इच्छा होती है ये सब सिद्धियां प्राप्त करके अंत में समाधि प्राप्त करके परमात्मा से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही स्पेशल बात बता रहे हैं, लेकिन भगवत भक्त खुद की तुष्टि के लिए इस प्रकार की कोई चीज नहीं चाहते हैं। वे केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान महान हैं और जीव आत्माओं के रूप में वे भगवान के नित्य अधीन अंश हैं। भक्त द्वारा होने वाली आत्मा की यह पूर्ण अनुभूति इसे इच्छा रहित बनने में, अर्थात अपने खुद के लिए कुछ भी इच्छा ना करने में सहाय करती है और इस प्रकार भक्त निष्काम कहलाता है। भक्त के हृदय में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान महान है, मैं आत्मा हूँ वो परमात्मा है, मैं अंश हूँ वो पूर्ण है, और मेरा कार्य केवल और केवल उनकी सेवा करना है। मुझे किसी वस्तु को प्राप्त करके आनंद नहीं आएगा, मेरा आनंद इसी में है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकूं। अपने खुद के लिए कुछ भी इच्छा ना करने की उसकी हृदय में ये कैसे वो बनता है, क्योंकि वो अपनी स्थिति को जानता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इच्छा रहित बनने में अर्थात अपने खुद के लिए कुछ भी इच्छा ना करने में सहाय होती है और इस प्रकार भगवत भक्त निष्काम होता है। उसके हृदय में भक्ति का मतलब ही यही है कि हमारे हृदय में भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं हो। यदि भगवान को प्रसन्न करने के अलावा हृदय में कोई इच्छा आ रही है ना, तो वो मलिनता है, वो अपराध है। और जैसे जैसे हम अभी वैदिक भक्ति करते जाएंगे, जैसे जैसे शुद्धता की ओर बढ़ेंगे, तो पवित्र भक्ति का एक ही लक्षण है कि हमारी कामनाएं समाप्त होनी चाहिए, भौतिक इच्छाएं समाप्त होनी चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो पाता। भुक्तिकामी, मुक्तिकामी तथा सिद्धिकामी सभी खुद की तुष्टि के लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते हैं,
लेकिन निष्काम भक्त भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करते हैं। वे भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं और भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। उनकी एक ही इच्छा होती है कि हम किसी भगवान की इच्छा को पूरी करें। भगवान ने जो आदेश दिया है उसको कैसे पूरा करें। जैसे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं अर्जुन की। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रारंभ में अर्जुन ने अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह आत्म तुष्टि का इच्छुक है, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था। जैसे पहले अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिं बभूयः, ऐसा कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा वो बैठ गया, क्योंकि वो बोल रहा था युद्ध करने से मेरा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जीतूंगा तो इस भौतिक जगत में मेरे सारे संबंधियों का नाश हो जाएगा, हार जाऊंगा तो मेरा यश समाप्त हो जाएगा, मुझे फायदा नहीं दिख रहा है कोई भी, न जीतने में लाभ निकल दिख रहा है और न ही हारने में दिख रहा है, तो फिर मैं युद्ध नहीं करना चाहता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते, लेकिन भगवान ने उसे निष्काम बनाने के लिए भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग तथा भक्ति योग की भी व्याख्या मिलती है। चूंकि अर्जुन निष्कपट था, अतएव उसने अपना निर्णय बदल दिया और युद्ध करने के लिए राजी होकर भगवान को तुष्ट किया। करिष्ये वचनम तव, इस तरह वह निष्काम बना। यानी वास्तव में भगवान ने भगवत गीता इसीलिए बताई अर्जुन को कि जीव जब तक अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई कार्य करेगा तो वो कर्मों के बंधन में फंसेगा, लेकिन जब जीव भगवान को प्रसन्न करने के लिए निष्काम सेवा करेगा तभी वो बंधनों से छूटेगा। और अंत में अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया और भगवान को कहा, आप जैसा कहोगे करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों के अनुसार कार्य करूंगा, और निष्काम होकर उन्होंने युद्ध किया। अब श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ना, गतव्य लीक अज शंकरादि भीम, यहाँ पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी का उदाहरण विशेष रूप से दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, श्रीमती लक्ष्मी तथा चार कुमार सनक, संदन, सनातन इत्यादि, ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदायों के अग्रणीय हैं। ये सभी सारे छल छद्मों से रहित हैं। श्री जीव गोस्वामी गतव्य लीक शब्द की व्याख्या प्रोजित कैतवय के रूप में करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, वे जो समस्त कपटों से मुक्त हैं, केवल अनन्य भक्त। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.149 में यह कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो लोग अपने पुण्य कर्मों के लिए सकाम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं तथा सर्वोपरि से तदाकार होना चाहते हैं, तथा जो योग की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वे सभी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ न कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्णतया शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और वह भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव उद्युत रहता है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सबों के हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसा कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता 8.9 में कहा है कि वे ही सबों को ऐसे फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे सबों के वेदांतियों, कर्मकांडियों, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर हैं, आदि नियंता हैं। लेकिन अंततो गत्वा निष्कपट भक्त ही उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्तिमय सेवा पर विशेष बल दिया है। श्री प्रभुपाद की।
अत्यंत ही सुंदरता से सुखदेव गोस्वामी भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भगवान जो संपूर्ण जीवों के आत्मा है, लेकिन संसार के जीव इस भौतिक जगत में आने के बाद विभिन्न वस्तुओं के द्वारा अपने आप को आनंद प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। कुछ वेद अध्ययन से कर्म कांड करते हैं, कुछ शास्त्रों से ज्ञान मार्ग भी चलते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, लेकिन भले कोई कितना ही कोशिश करता जाए, जब तक वो निष्कपट भाव से भगवान की शरण में नहीं आता, भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। और जीव को जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वो चाहे कितना ही सिद्धि प्राप्त कर ले, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर ले, या चाहे कितना ही तपस्या या ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन उसे आनंद प्राप्त हो ये संभव नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता संसार में जिसे अपनी सारी इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाएं और उसको आनंद प्राप्त हो जाए, क्योंकि आनंद वस्तुओं में नहीं है। आनंद का सागर तो भगवान है। जीव जब तक आनंदित नहीं हो सकता, जब तक वो भगवान को प्राप्त न कर सके, और भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, शुद्ध भक्ति, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं हो, जिसके अंदर कोई प्रयोजन नहीं हो, जिसके अंदर कोई कपट नहीं हो। तो ये इस कलयुग में हमारे लिए गोल्डन चांस है, केवल भगवान के पवित्र नाम को जप करने से, भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करने से हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो फिर कुछ और प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सब कुछ भगवान ही तो है, सबके नियंता, त्रयमयो धर्ममयो तपमयो, सब कुछ भगवान है। और जब भगवान शुद्ध भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं तो जीव आनंदित हो जाता है, उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाता है। बाकी यदि दूसरी इच्छाएं होंगी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तो हृदय कभी शांत नहीं होगा। आगे भगवान को समस्त वस्तुओं का स्वामी अत्यंत ही सुंदर रीति से सुखदेव गोस्वामी भगवान को पति कहकर बुलाते हैं। पति इस श्लोक में 8 बार सुखदेव गोस्वामी भगवान को पति कहते हैं। पति का मतलब होता है स्वामी, यानी भौतिक जितनी भी वस्तुएं हैं, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, उनका स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। तो जब साक्षात भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जब स्वामी प्रसन्न हो जाएगा, तो उनके अंदर में जो कुछ है वो तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसन्न है तो फिर दास तो उनके मतलब अंदर में है, वो तो उनको तो प्रसन्न करने के लिए कुछ अलग से चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर दास सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रिया पति यज्ञ पति प्रजापति ध्याम पति लोक पति धरापति पति गतिश्चांदकवि श्री सात्वताम प्रसीदताम मे भगवान सताम पति श्रिया पतिर्यज्ञ पति प्रजापति ध्याम पतिर्लोक पति धरापति पति गतिशांदकव ऋषि सात्वताम प्रसीदताम मे भगवान सताम पति श्रियः पति यज्ञ पति प्रजापति ध्याम पति लोक पति धरापति पति गतिशांदकवि श्री सात्वताम प्रसीदताम मे भगवान सताम पति श्रिया पति यानी समस्त ऐश्वर्य के स्वामी। श्रेया कहते हैं ऐश्वर्य। यज्ञपति अर्थात समस्त यज्ञों के निर्देशक, प्रजापति यानी समस्त जीवों के नायक, दियाम यानी बुद्धि के पति, दियामपति यानी जो हमारी बुद्धि है उसके पति, लोकपति यानी समस्त लोकों के स्वामी, धरापति यानी पृथ्वी के स्वामी, पतिर गतिव यानी पतिर यानी अग्रणीय, गति यानी गंतव्य, च अंधक यानी यदुवंश के राजाओं के में से एक जिसका नाम अंधक है, विष्णी यानी यदुवंशों के पहले राजा, सात्वतम यानी यदुगण, प्रसीदतम कृपालु हों में मुझ पर, भगवान सताम पति, भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण जो कि भक्तों के स्वामी हैं। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा ऋषि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति हैं, समस्त यज्ञों के निर्देशक हैं, अतएव समस्त जीवों के अग्रणीय हैं, समस्त बुद्धि के नियंता हैं, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। श्री रूपा जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से हमें बता रहे हैं कि चूंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गतव्य लेख अर्थात गलत धारणा से मुक्त हैं, अतएव भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों के सार के रूप में बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण समस्त लक्ष्मियों के प्रियतम पति हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहां लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती हैं। ये सारी लक्ष्मियां उनकी अंतरंग शक्ति के अंतर्गत हलादनी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने इस अलहदनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन भद्र जीवों को आकर्षित करने के लिए रासलीला के रूप में किया जो तुच्छ काम वासना की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने जो भौतिक जगत के गृहित विषयी जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त हैं, भगवान की आलादनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना यानी यौन से संबंधित करके कभी विवेचना नहीं किया, अपितु उन सांसारी लोगों के लिए जो विषयी जीवन के पीछे दौड़ते हैं अचिंत्य दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए उनका विवेचन किया। संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन है, और सुखदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषयी जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे, ना ही भगवान की हलादनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। यहाँ बशील प्रभुपा जी श्रेयपति यानी समस्त जितने भी ऐश्वर्य हैं उनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण जितनी भी लक्ष्मियां हैं उनके स्वामी, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा के लिए सदैव इच्छुक रहती हैं। और ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ये सारी लक्ष्मियां भगवान की अलादनी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, उनका ही एक अंश है। और जब भगवान श्री कृष्ण संसार में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो जो अलादनी शक्ति के कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर संसार में रासलीला के जैसे मनोहर लीलाएं करते हैं भगवान, लेकिन यहाँ पर एक बात को श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं कि भगवान के अंदर कोई काम या काम इच्छा नहीं होती है, इसके लिए नहीं, लेकिन ये तो शुद्ध भक्तों के प्रेम की पराकाष्ठा को बताने के लिए भगवान के साथ एक जीव का माधुर्य संबंध किस तरह से स्थापित किया जा सकता है उसके लिए भगवान बता रहे हैं
क्योंकि जो विषय जीवन है इस संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का एकमात्र। तो शुभदेव गोस्वामी जैसे विरक्त जो व्यक्ति हैं, जो संसारी विषय जीवन में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं, तो फिर वो किसी विषय वस्तु या विषय बात के लिए तो इतना श्रीमद् भागवतम में नहीं बताएंगे और ना ही भगवान की अलानी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो कि एक दृढ़ सन्यासी थे, वो कभी भी किसी स्त्री के साथ नहीं मिलते थे, यहाँ तक कि स्त्री के को जो ना प्रणाम भी नहीं कर, स्त्री को ये भी परमिशन नहीं होती थी कि महाप्रभु को जाके प्रणाम करें। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, यहाँ तक कि वे किसी भी स्त्री को नमन करने तथा प्रणाम करने के लिए भी अपने निकट नहीं आने देते थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को स्त्री जाति द्वारा गाए गए गीत भी सुनने की मनाही है। फिर भी दृढ़ सन्यासी पद पर रहते हुए भी उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेम भक्ति के रूप में मान्यता दी। रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता, यानी कि अगर प्रेम भगवान को किसी ने सर्वोच्च प्रेम भक्ति का कोई अगर है ना सूचक है तो वो कौन है, वृंदावन की गोपियां हैं। और श्रीमती राधा रानी तो इसी लक्ष्मियों में प्रधान है, अतएव भगवान की हलादिनी अर्धांगिनी है और कृष्ण से अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के करने की संस्तुतियां की गई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी द्वारा की गई कृपा ही है, और लक्ष्मी जी के पति या प्रियतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। वे सभी प्रकार के यज्ञों को के अंतिम भोक्ता हैं, अतः विष्णुओं का एक अन्य नाम यज्ञपति है। श्रीमद् भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए ही किया जाए, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण बनेंगे। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं यानी व्यलीकम से मुक्त नहीं होते हैं, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानता है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता हैं, अतएव वे संकीर्तन यज्ञ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत किया गया है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्थता अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी श्रेयपति यज्ञपति यानी जितने भी यज्ञ हैं उनके पति उनके स्वामी भगवान हैं, और इसीलिए वही यज्ञ करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। जो बेवकूफ होते हैं भगवान को नहीं जानते, वो अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, लेकिन जो भगवान के बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान के भक्त होते हैं, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद में बताया जाता है कि कलयुग में जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वे यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजन्ति ही सुमेधसा। बुद्धिमान व्यक्ति केवल संकीर्तन यज्ञ से भगवान को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है वो भी वो लाभ भी लक्ष्मी देवी की लक्ष्मी देवी के द्वारा की गई कृपा है। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान की सेवक जितने भी हैं जितने देवी देवता हैं वो सब भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो अलग अलग किसी और को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 3.10 एंड 11 में हमें यह जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में बद्ध जीवों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने तथा संपन्न जीवन बिताने के आदेश का आदेश दिया। ऐसे यज्ञों के संपन्न करने से बद्ध जीवों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती। अंततोगत्वा वे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जीवन में सहज में ही हो गई है और वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ दान तथा तपस्या का परित्याग ना करे, किसी भी दशा में ना करे। श्रीमद् भगवद गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपह कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। यज्ञ दान और तपस्या अवश्य करने चाहिए और यही चाहे आप कितने ही महान हो जाओगे तो भी आपको पवित्र करने की विधि यही है कि जीव यज्ञ दान और तपस्या करते रहे। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है, इसीलिए भगवान प्रजापति भी हैं। कठोपनिषद के अनुसार अकेले भगवान असंख्य जीवों के नायक हैं। सारे जीव भगवान द्वारा पालित हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामना, इसीलिए भगवान सर्वपरि भूत भृत यह सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुपात के अनुसार ही बुद्धि प्राप्त की जाती है। यहाँ पर आगे जो बताया गया कि श्रेयपति यज्ञपति प्रजापति धियाम यानी बुद्धि, जीव के अंदर जितनी भी बुद्धि है, आज हम मनुष्य बहुत अहंकार करता है कि आज का मनुष्य इतना बुद्धिमान है, इतने सारे इन्वेंशन करता है, साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, ये करते वो करते, लेकिन यहाँ पर बुद्धि कहाँ से आती है जीव के अंदर, उसके विषय में बताया जाता है। जीवों को अनेक पूर्व कर्मों के अनुपात के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है और बुद्धि देने वाले कौन है, बुद्धिर बुद्धि मदामस्मी। श्रील प्रभुपाद जी बोलते सारे जीवों को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती है, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे भगवान का नियंत्रण रहता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में बताया गया सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त सिमृते ज्ञानमपो हनम च। भगवान कहते हैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और पूर्व कर्मों के अनुसार उनको बुद्धि और विस्मृति की शक्ति प्रदान करता हूँ। तो भगवान यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में घोषणा की गई है कि परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, उन्हीं से स्मृति ज्ञान तथा शक्ति विस्मृति आती है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने भूतकाल के कार्यों को भलीभांति स्मरण कर सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है किंतु उसी नियंत्रण से दूसरा व्यक्ति मूर्ख होता है, अतएव भगवान दियाम पति अथवा बुद्धि के स्वामी है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग भावबंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, लेकिन बद्ध जीव अपने पागलपन के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही अपनी सारी शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। परिणाम यह होता है कि पागल जीव बद्ध जीव संपूर्ण स्वतंत्रता का मुक्त जीवन प्राप्त न करके पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह भगवान की ही सृष्टि है, अतएव समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के वे ही असली स्वामी हैं। बद्ध जीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का भोग कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनकर नहीं। यही ईशोपनिषद का उपदेश है। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए, जो भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। या तो मेरा पागलपन है कि कोई दूसरे के हिस्से की भौतिक संपत्ति में अधिकार जताने का प्रयास करता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, संसार में मनुष्य को जीवन मिला है ताकि वो इस मनुष्य जीवन में ऐसा कार्य करे जिससे वो बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करे। लेकिन जीव इतना पागल हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश में अपने इस मनुष्य जीवन को बिगाड़ देता है, उसका अपव्यय करता है, मिसयूज करता है। तो और क्या सोचता है कि मुझे अधिक से अधिक दूसरों की भी संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है। अगर जीव अपने ही भाग्य से मिली हुई वस्तुओं पर संतुष्ट रहकर भगवान की भक्ति करेगा तो अवश्य उसे वास्तविक धाम प्राप्त होगा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहितु की कृपावश अपनी ही शक्ति यानी आत्म माया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। संसार में भगवान बार बार आते हैं और केवल उसका कारण क्या है कि वो बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि एना प्रकारे मन जो है वो उनके अंदर लगे, उनकी लीलाओं में, उनकी कथाओं में, उनके नाम, तो वे सबों को उनके नियंत्रण में कुछ हद तक झूठे ही भोक्ता बनने की बजाय अपनी शरण में आने के लिए उपदेश देते हैं। जबकि वे इस तरह अवतरित होते हैं तब वे यह सिद्ध कर देते हैं कि उनमें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है। वे एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन यानी उदाहरण के तौर पर करते हैं। बद्ध जीव केवल एक ही पत्नी का पति बनकर गर्व का अनुभव करता है, लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं। बद्ध जीव बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है। वास्तव में भगवान ही अपनी सृष्टि की सारी स्त्रियों के पति हैं, लेकिन भगवान से नियंत्रित होने वाला बद्ध जीव अपने को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पत्नियों की ये योग्यताएं भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती हैं। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया है। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान के साथ भगवत धाम वापस जाना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के साथ के सारे सदस्य तथा भगवान नित्य संगी हैं। अतः भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूर्ति भावों से भगवान को सादर नमस्कार किया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर बात बता रहे हैं कि यदुवंश का नाश क्यों हुआ था, क्योंकि वो भगवान यदुओं के स्वामी हैं। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक में बताया कि विष्णु सात्वतम अंधक विष्णु सात्वतम, विष्णु वंश यानी यदुवंशों के स्वामी कौन है, भगवान है। और जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे तो यदुवंशों को यहाँ पर रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए भगवान ने उनको भी यहाँ से पृथ्वी लोक से वापस से भेज दिया। कोई ना कोई कारण से युद्ध हो गया या फिर जो भी हो गया, आपस में लड़ मर के यहाँ से उनको जाना था, क्योंकि जहाँ भगवान होंगे वहीं पर उनके शुद्ध भक्त होंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितना भी ये पति की जितनी योग्यताएं हैं, चाहे वो श्रेय के पति हो, यज्ञ के पति हो, प्रजा के पति हो, या फिर बुद्धि के पति हो, ये वास्तव में पति यानी स्वामी केवल भगवान ही है। केवल भगवान श्री कृष्ण ही पति कहलाने के योग्य हैं। और जब संसार में भी वो आते हैं तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि भोक्ता केवल वही हो सकते हैं। संसार में कोई जीव दो चार पत्नियों का पति बनकर भी कितना गर्व महसूस करता है, लेकिन वास्तव में भगवान ही समस्त जीवों के पति हैं और समस्त जीवों को समस्त वस्तुएं प्रदान करने वाले हैं। यज्ञ से जो वस्तु प्राप्त होती है, बुद्धि से जो कार्य करते हैं, जो भी तपस्या से फल प्राप्त होता है, उस सब का देने वाला भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं उन्हीं भगवान को प्रणाम करता हूँ, कृपया वो मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर इतनी कृपा करें, मेरे ऊपर कृपालु होकर मुझे अपनी कृपा का दान दें ताकि मैं उनके विषय में कुछ कह सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।